विरह ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए जहाँ कहीं जायसी ने ऊहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक शैली का अवलंबन किया है, वहाँ अधिकतर तीसरे प्रकार का विधान ही देखने में आता है, जिसमें ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य और स्वतः संभवी होता है, पर उसके हेतु की कुछ और ही कल्पना की जाती है। इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है। इससे हेतुत्प्रेक्षा का सहारा लिया जाता है, जिसमें अप्रस्तुत वस्तुओं का गृहीत दृश्य वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित होता है। हेतु परोक्ष हुआ करता है, इससे उसकी अतथ्यता सामने आकर प्रतीति में बाधा डालती नहीं जान पड़ती। इस युक्ति से कवि विरह ताप के प्रभाव की व्यापकता को बढ़ाता बढ़ाता सृष्टि भर में दिखा देता है। एक उदाहरण काफी होगा। अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा, दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा, और सब नखत तराई जरही, टूटही लूक धरति मह परही, जरे सो धरति ठाव ही ठाऊ, दह की पलास जरै नहीं दाऊं। इन चौपाइयों में मेघों का श्याम होना, राहु केतु का काला होना, सूर्य का तपना, चंद्रमा की कला का खंडित होना, पलाश के फूलों का लाल होना आदि सत्य है। ये विरह ताप के कारण ऐसे हैं, केवल यह बात कल्पित है। ताप के अतिरिक्त विरह के और अंगों का भी विन्यास जायसी के इस हृदयहारिणी और व्यापकत्व विधायिनी पद्धति पर बाह्य प्रकृति को मूल आभ्यंतर जगत का प्रतिबिंब सा दिखाते हुए किया है। काम हेतुत्प्रेक्षा से लिया गया है। प्रेम योगी रत्नसेन के विरह व्यथित हृदय का प्रभाव हम सूर्य, चंद्र, पेड़, पक्षी, चट्टान सब में देखते चलते हैं। रोव रोव वह बाण जो फूटे, सूत ही सूत रुहिर मुख छूटे, नयन ही चली रकत के धारा, कंथा भीजी भयो रतनारा, सूरज बूढ़ी उठा होई ताता, और मजीट टे सुबन राता, भा बसंत राती बन सपति, और आते सब जोगी जति, भूमि जो भीजी भयो सब गेरु, और आते तहु पंखी पखेरु, राति सती अग्नि सब काया, गगन मेघ राते तही छाया, इंगुर भा पहार जो भीजा, पै तुम्हार नहीं रोव पसीजा। इसी प्रकार नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। कुहुक जस कोइल रोई, रकत आंसु घुंगुच बन बोई, जहाँ जहाँ ठाड़ी होई बनवासी, तह तह होई घुंगुच कै रासी, बूंद बूंद मह जानहु जियु, गूंजा गूंजी करे पियु पियु, तही दुख भय परास निपाते, लोहु बूढ़ी उठे होई राते, राते बिंब भीजी तही लोहु, परवर नाक फाट ही अगोहु। विरह वर्णन में भक्तवर सूरदास जी ने भी गोपियों के हृदय के रंग में बाह्य प्रकृति को रंगा है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उन पदार्थों को कोसा है जो उस रंग से कोरे दिखाई पड़े हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे, कौन काज ठाड़े रहे वन में, काहे न उकटी परे। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु, पक्षी, पेड़, पल्लव जो कुछ सामने आता है उसे वह अपना दुखड़ा सुनाती है। यह पुष्प दशा धन्य है, जिसमें ये सब अपने सगे लगने लगते हैं और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से भी जी हल्का होगा। सब जीवों का शिरोमणि मनुष्य और मनुष्यों का अधीश्वर राजा, उसकी पटरानी जो कभी बड़े बड़े राजाओं और सरदारों की बातों की ओर भी ध्यान न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कह रही है, उनके सामने अपना हृदय खोल रही है। हृदय की इस उदार और व्यापक दशा का कवियों ने केवल प्रेम दशा के भीतर ही वर्णन किया है। यह बात ध्यान देने योग्य है। मारने के लिए शत्रु का पीछा करता हुआ क्रोधातुर मनुष्य पेड़ों और पक्षियों से यह पूछता हुआ कहीं नहीं कहा गया है कि भाई किधर गया। वाल्मीकि, कालिदास आदि से लेकर जायसी, सूर, तुलसी आदि भाषा कवियों तक सबने इस दशा का सन्निवेश विप्रलम्ब से ही किया है। वाल्मीकि के राम सीता हरण होने पर वन वन पूछते फिरते हैं, हे कदंब, तुम्हारे फूलों से अधिक प्रीति रखने वाली मेरी प्रिया को यदि जानते हो तो बताओ। हे बिल्व वृक्ष, यदि तुमने उस पीत वस्त्र धारिणी को देखा हो तो बताओ। हे मृग, उस मृग नयनी को तुम जानते हो। इस प्रकार तुलसी के राम भी वन के पशु पक्षियों से पूछते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कालिदास का यक्ष भी चेतना चेतन भेद इसी प्रेम दशा के ही भीतर भूला है। इससे यह सिद्ध है कि कवि परंपरा के बीच यह एक मान्य परिपाटी है कि इस दशा का वर्णन प्रेम दशा के भीतर ही हो। इस संबंध में मामूली तौर पर तो इतना ही कहना काफी समझा जाता है कि उन्माद की व्यंजना के लिए इस प्रकार का आचरण दिखाया जाता है। उन्माद ही सही, पर एक खास ढर्रे का है। इसका आविर्भाव प्रेम ताप से पिघल कर फैले हुए हृदय में ही होता है। संबंध का मूल प्रेम है, अतः प्रेम दशा के भीतर ही मनुष्य का हृदय उस संबंध का आभास पाता है जो पशु पक्षी द्रुम लता आदि के साथ अनादि काल से चला आ रहा है। नागमती उपवनों में रोती रोती फिरती है। उसके विलाप से घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की नींद हराम हो गई है। फिर रोव कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तू फिर दाहे सब पाखी, कही दुख रैनी ना लावसी आँखी। और कवियों ने पशु पक्षियों को संबोधन भर करने का उल्लेख करके बात और आगे नहीं बढ़ाई है, जिससे ऊपर से देखने वालों का ध्यान उन्माद की दशा तक ही रह जाता है। पर जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पशु पक्षियों से सहानुभूति प्राप्त करने की संभावना की है, उसी प्रकार पक्षियों के हृदय में सहानुभूति के संचार की भी। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। राम के प्रश्न का खग मृग और मधुकर कुछ जवाब नहीं देते हैं। राजा पुरूरवा कोकिल हंस इत्यादि को पुकारता ही फिरता है, पर कोई सहानुभूति प्रकट करता नहीं दिखाई पड़ता। पर नागमती की दशा पर एक पक्षी को दया आती है, वह उसके दुख का कारण पूछती है। नागमती उस पक्षी से कहती है, चारु चक्र उजार भये कोई न संदेशा टेक, कहो विरह दुख आपन बैठी सुनहु दंड एक। इस पर वह पक्षी संदेशा ले जाने को तैयार हो जाता है। पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो संदेशा कहा है वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उसमें मान गर्व आदि से रहित, सुख भोग की लालसा से अलग अत्यंत नम्र शीतल और विशुद्ध प्रेम की झलक पाई जाती है। पद्मावती सौ कहे हु विहंगम, कंत लोभाई रही करि संगम। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह हिये दुंद दुख पीरा। हमहु बियाहि संग ओहि पीयु, आपु ही पाई जानु पर जीयु। मोहि भोग सो काज न बारी, सौह दृष्टि के चाहन हारी। मनुष्य के आश्रित मनुष्य के पाले हुए पेड़ पौधे किस प्रकार मनुष्य के सुख से सुखी और दुख से दुखी दिखाई देते हैं, यह दृश्य बड़े कौशल और सौहृदयता से जायसी ने दिखाया है। नागमती की विरह दशा में उसके बाग बगीचों से उदासी बरस रही थी। पेड़ पौधे सब मुरझाए पड़े थे, उनकी सुध कौन लेता। पर राजा रत्नसेन के लौटते ही पलुही नागमती कै बारी, सोन फूल फूली फुलवारी। जावत पंख रहे सब दहे, सबै पंख बोले गह गहे। जब पेड़ पौधे सूख रहे थे तब पक्षी भी आश्रय न पाकर ताप से झुलस रहे थे। इस प्रकार नागमती की वियोग दशा का विस्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक दिखाई पड़ता था। कालिदास ने पाले हुए मृग और पौधों के प्रति शकुंतला का स्नेह दिखाकर इसी व्यापक और विशद भाव की व्यंजना की है। विप्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। विरह दशा के वर्णन में जहाँ कवि ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, वहाँ कोई अरुचिकारक विभत्स दृश्य नहीं आया है। कृष्णता ताप वेदना आदि के वर्णन में भी उन्होंने श्रृंगार के उपयुक्त वस्तु सामने रखी है, केवल उसके स्वरूप में कुछ अंतर दिखा दिया। जो पद्मिनी स्वभावतः पद्मिनी के समान विकसित रहा करती थी वह सूख कर मुरझाई हुई लगती है। कमल सूख पंखुरी बहरानी, गली गली कै मिली छार हेरानी। इस रूप में प्रदर्शित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दया का पूरा अवसर रहता है। पाठक उसकी दशा व्यंजित करने वाली वस्तु की ओर कुछ देर दृष्टि गड़ाकर देख सकते हैं। मुरझाया फूल भी फूल है, अतीत सौंदर्य के स्मरण से भाव और उद्दीप्त हो जाता है, पर उसके स्थान पर यदि चीर कर हृदय का खून, नसें और हड्डियां आदि दिखाई जाएं, तो दया होते हुए भी इन वस्तुओं की ओर दृष्टि जमाते न बनेगा। विरह दशा के भीड़ निरवलंबता की अनुभूति रह रहकर विरही को होती है। देखिए कैसा परिचित और साधारण प्राकृतिक व्यापार सामने रखकर कवि ने इस निरवलंबता का गोचर प्रत्यक्षीकरण किया है। आवा पवन बिछोह कर पात परा बेकरार, परिवर तजा जो चूरी कह लागे के ही के डार। लागे के ही के डार मुहावरा भी बहुत अच्छा आया है। पद्मावत में हिंदू जीवन के परिचायक भावों की ही प्रधानता है। बीच बीच में फारसी साहित्य द्वारा प्रोषित भावों के भी छींटे कहीं कहीं मिलते हैं। विदेशी प्रभाव के कारण वियोग दशा के वर्णन में कहीं कहीं विभत्स चित्र सामने आ जाते हैं, जैसे कबाबे सीख वाला यह भाव, विरह सराघनी कूजय मासु, गिरी गिरी पर रकत के आंसू, कटी कटी मांसु सराग पिरोबा, रकत के आंसू मासु सब रोवा, खिन एक बार मासु अस भूंजा, खिन ही चबाए सिंह अस गुंजा। वियोग में इस प्रकार के विभत्स दृश्य का समावेश जायसी ने जो किया है वह तो किया ही है, संयोग के प्रसंग में भी ये एक स्थान पर ऐसा ही विभत्स चित्र सामने लाए हैं। बादल जब अपनी नवागता बहू की ओर से दृष्टि फेर लेता है, तब वह सोचती है कि क्या मेरे कटाक्ष तो उसके हृदय को बेद कर पीठ की ओर नहीं जा निकले हैं। यदि ऐसा है तो तुम भी लगाकर मैं उसे खींच लूं, और जब वह पीड़ा से चौंक कर मुझे पकड़े तो गहरे रस से उसे धो डालूं। मुकु पियु दृष्टि समान हो सालू, हुलसा पीठी कढ़ावो सालू, कुछ तुम भी अब पीठी गुड़ावो, गहे जोहु की गाढ़ रस धोवो। कटाक्ष या नेत्रों को अनियारे नुकीले तक कह देना तो ठीक है, पर ऊहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक पद्धति पर इस कल्पना को और आगे बढ़ाकर शरीर पर सचमुच घाव आदि दिखाने लगना काव्य की सीमा के बाहर जाना है, जैसा कि एक कवि जी ने किया है। काजर दे नहीं ए रि सुहागिन, आंगुरी तेरी कटेगी कटाछन। यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है, तब तो तरकारी चीरने या फल काटने के लिए छुरी हंसिया आदि की कोई जरूरत ना होनी चाहिए। कटाक्ष मन में चुभते हैं, न कि शरीर में प्रत्यक्ष घाव करते हैं। विरह जन्य कृष्णता के वर्णन में भी जायसी ने कवि प्रथानुसार पूरी अत्युक्ति की है, पर इस अत्युक्ति में भी गंभीरता बनी हुई है। वह खिलवाड़ या मजाक नहीं होने पाई है। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से चार कदम पीछे हट जाती है, और जब सांस निकालती है तब उसके साथ चार कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम किसी दशा उसकी रहती है। इसी प्रकार उर्दू के एक शायर ने आशिक को जूं या खटमल का बच्चा बना डाला है। इंतहाए लागरी से जब नजर आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। पर जायसी का यह वर्णन सुन हृदय द्रवीभूत होता है, हंसी नहीं आती। दही कोयला भई मासु सनेहा, तोला मासु रही नहीं देहा, रकत न रहा विरह जन जरा, रति रति होई नैनन ढरा, रोव रोव थे धूनि उठे, कहीं बिथा के ही भांति। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत यह प्रसिद्ध बारह मासा है, जिसमें वेदना अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान जाने पर भी इसके सौंदर्य का बहुत कुछ हेतु अनिर्वचनीय रह जाता है। इस बारह मासे में वर्ष के बारह महीनों का वर्णन विप्रलंब श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है, जिसमें आनंदप्रद वस्तुओं का दुखप्रद होना दिखाया जाता है, जैसा कि मंडन कवि ने कहा है। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई, कवि मंडन बिछुरत जदुपत्ति। प्रेम में सुख और दुख दोनों अनुभूति की मात्रा जिस प्रकार बढ़ जाती है, उसी प्रकार अनुभूति के विषयों का विस्तार भी। संयोग की अवस्था में जो प्रेम सृष्टि की सब वस्तुओं से आनंद का संग्रह करता है, वही वियोग की दशा में सब वस्तुओं से दुख का संग्रह करने लगता है। इसी दुखद रूप में प्रत्येक मास की उन सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन जायसी ने किया है, जिनके साहचर्य का अनुभव मनुष्य मात्र राजा से लेकर रंक तक करते हैं। अतः इस 12 मासे में मुख्यतः दो बातें देखने की हैं। एक, प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन। दो, दुख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना। प्रथम के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत कवियों का संश्लिष्ट विशद चित्रण उत्तीवन की दृष्टि से किए हुए ऋतु वर्णन में नहीं हुआ करता। केवल वस्तुओं और व्यापारों की अलग अलग झलक भर दिखाकर प्रेमी के हृदय की अवस्था की व्यंजना हुआ करती है। परिचित प्राकृतिक दृश्य को साहचर्य द्वारा और कवियों की वाणी द्वारा जो मर्म स्पर्शी प्रभाव प्राप्त है, उसका अनुभव उनकी ओर संकेत करने मात्र से भी सहृदयों को हो जाता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर संकेत, बहुत ही मनोहर झलक ऐसे 12 मासे में हम पाते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए। चढ़ा असाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम साम घोरे घन धाये, सेत धजा बग पांति देखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरि सही चहु ओरा, बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी, जग जल बूढ़ जहां लगिता की, मोरी नाव खेवक बिन था की, जेठ जरै जग चले लुवारा, उठहि बवंडर पर ही अंगारा, उठे आगि और आवे आंधी, नैन न सूज मरो दुख बाधी। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सब हृदयों को समान रूप से स्पर्श करते हैं। यदि कनक पर्यंक, मखमली सेज, रत्न जटित अलंकार, संगमरमर के महल, खस खाने इत्यादि की बातें होती तो वे जनता के एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होती। पर जायसी ने स्त्री जाति के समुज्ज्वल रूप का विकास दिखाया है। देखिए, चौमासे में स्वामी के न रहने से घर की जो दशा होती है वह किस प्रकार गृहिणी के विरह का उद्दीपन करती है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। इसी प्रकार शरीर का रूपक देकर बरसात आने पर साधारण गृहस्थों की चिंता और आयोजना की झलक दिखाई गई है। तपे लागी अब जेड़ असाड़ी, मोहि पियो बिन छाजनी बई घाड़ी, तन तिनऊर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी, बंध नाही और कंध न कोई, बात न आव कहाँ का रोई, साठी नाठी जब बात को पूछा, बिन जीव फिरे मूंज तनु छूछा, भई दुहेली टेक बिहोनी, थाम नाही उठ सके न थूनी, बरसे मेह चुवही नैनाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा, कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। यद्यपि इस 12 मासे में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की भी रूढ़ी के अनुसार अलग अलग झलक भर दिखाई गई है, उनका संश्लिष्ट चित्रण नहीं है, पर एकाध जगह कवि का अपना निरीक्षण बहुत सूक्ष्म और सुंदर है, जिसका उल्लेख वस्तु वर्णन के अंतर्गत किया जाएगा। अब दुख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना लीजिए। जायसी के विरहोद्गार अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। जायसी को हम विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। जो वेदन, जो कोमलता, जो सरलता और जो गंभीरता इसके वचनों में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नागमती सब जीव जंतु और पशु पक्षियों में सहानुभूति की भावना करती हुई कहती है, पीयूषो कहे उ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मोई, तही का धुआं हम लाग। इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय में होती कैसे है, यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। संदेशड़ा शब्द में स्वार्थड़ा का प्रयोग भी बहुत उपयुक्त है। ऐसा शब्द उस दशा में मुंह से निकलता है जब हृदय प्रेम, माधुर्य, अल्पना, तुच्छता आदि में से कोई भाव लिए हुए होता है। हे भौरा हे काक से एक एक को अलग अलग संबोधन करना उचित नहीं होता है। आवेग की दशा में यही उचित है, हे भौरा ओ काक कहने में यह बात न होती। दुख और आह्लाद की दशा में एक बड़ा भारी भेद है। जब हृदय दुख में मग्न रहता है तब सुखद और दुखद दोनों प्रकार की वस्तुओं से दुख का संग्रह करता है, पर आनंद की दशा का पोषण केवल सामान्य या आनंददायक वस्तुओं से ही होता है, दुखप्रद वस्तुओं से नहीं। विरह दशा दुख दशा है, इसमें कष्टकारक वस्तुएं तो और भी कष्टदायक हो जाती हैं, जैसे कांपे हिया जनावे सीउ, तोपे जाई होई सग पीउ, पहल पहल तन रोई झापे, हहरी हहरी अधिको हिय कांपे। ख चारिहु पवन झकौरे आगी, लंका दाही पलंका लागी, उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। सुखदायक वस्तुएं भी दुख को बढ़ाती हैं, जैसे कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी, चौदह करा चांद परगासा, जनहु जरे सब धरती अकासा, तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कहा चंद भयहु मोहि राहु। कहीं संयोग सुख या आनंदोत्सव देखकर अपने पक्ष में उसके अभाव की भावना से विरह की आग और भी भड़कती है। क अबहु निठुर आऊ एही बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झुमुक गावे अंग मोरी, हो झुराव बिधुरी मोरी जोरी। ख करही वनस्पति हिये हुलासु, मो कहा भा जगदून उदासु, फाग करही सब चांचरी जोरी, मोहि तन लाई दीन जस होरी। नागमती देखती है कि बहुतों के बिछड़े हुए प्रिय मित्र आ रहे हैं पर मेरे प्रिय नहीं आ रहे हैं। यह वैषम्य की भावना उसे और भी व्याकुल करती है। किसी वस्तु के अभाव से दुखी मनुष्य के हृदय की यह अत्यंत स्वाभाविक वृत्ति है। पपीहे का प्रिय पयोधर आ गया, सीप के मुंह में स्वाति की बूंद पड़ गई, पर नागमती का प्रिय न आया। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीउ पुकारत पावा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर समरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन देखाए। विरह का दुख ऐसा नहीं कि चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनसे कुछ जी बहले, उनसे तो और भी अपनी दशा की ओर विरही का ध्यान जाता है और भी उस दशा का स्वरूप स्पष्ट होता है। चाहे ये उसकी दुख दशा से भिन्न दशा में दिखाई पड़े, चाहे कुछ सादृश्य लिए हुए, भिन्न भाव में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के नमूने तो ऊपर के उदाहरणों में आ गए हैं। अब भिन्न भिन्न ऋतुओं की नाना वस्तुओं और व्यापारों को विरही लोग किस प्रकार सादृश्य भावना द्वारा अपनी दशा की व्यंजना का सुलभ साधन बनाया करते हैं यह भी देखिए। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी, पुरवा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी, सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियरी भूमि कुसंभी चोला, हिय हिडोल अस डोले मोरा, विरह झुलाई देई झक झोरा, तन जस पियर पात भा मोरा, तही पर विरह देई झक झोरा। विरहिणी की इस सादृश्य भावना का वर्णन कवि परंपरा सिद्ध है। सूरदास का निसिदिन बरसत नैन हमारे यह पद प्रसिद्ध है और कवियों ने ऋतु सुलभ वस्तुओं और व्यापारों के साथ विरहिणी के तन और मन की दशा का सादृश्य वर्णन किया है। यह सादृश्य कथन अत्यंत स्वाभाविक होता है क्योंकि इसमें उपमान ऊहा द्वारा सोचकर निकाला हुआ नहीं होता बल्कि सामने प्रस्तुत रहता है और प्रस्तुत रहकर उपमेय की ओर ध्यान ले जाता है। वैशाख में विरहणी एक ओर सूखते तालों की दरारों को देखती है, दूसरी ओर विदीर्ण होते हुए अपने हृदय को। बरसात में तो एक ओर तो टपकती हुई ओलती देखती है, दूसरी ओर अपने आंसुओं की धारा। एक ओर सूखे हुए आंख जवास को देखती है, दूसरी ओर अपने शरीर को। शिशिर में एक ओर सूख कर झड़े हुए पीले पत्तों को देखती है, दूसरी ओर अपनी पीली पड़ी देह को। अतः उक्त उपमाएं दूर की सूझे नहीं हैं, उनमें सादृश्य बहुत सोचा विचारा हुआ नहीं है। उसका हृदय विरह विवल अंतःकरण में बिना प्रयास हुआ है। दो उपस्थित वस्तुओं में सादृश्य की ऐसी स्वाभाविक भावना संस्कृत कवियों ने बहुत अच्छी की है। कालिदास का यह श्लोक ही लीजिए। स पाटलायम गवि तस्थिवांसम, धनुर्धर केसरिणम ददर्श, अधित्य कायामिव धातु मथ्याम, लोधद्रुमम सानुमत प्रफुल्लम। इस 12 मासे में हृदय के वेग की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीति से होने पर भी भाव अत्यंत उत्कर्ष दशा को पहुंचे हुए दिखाए गए हैं। देखिए अभिलाषा का यहाँ कैसा उत्कर्ष है। रात ही दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोरे कंत अब तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकु नहीं मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। जायसी का रहस्यवाद। सूफियों के अद्वैतवाद पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार आर्य जाति, भारतीय और यूनानी के तत्व चिंतकों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को सामी पैगंबरी मतों में रहस्य भावना के भीतर स्थान मिला। उक्त मतों के बीच तत्व चिंतन की पद्धति या ज्ञान कांड का स्थान न होने के कारण, मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि या अक्ल का दखल न होने के कारण, अद्वैतवाद का ग्रहण रहस्यवाद के रूप में ही हो सकता था। इस रूप में पढ़कर यह धार्मिक विश्वास में बाधक नहीं समझा गया। भारतवर्ष में तो यह ज्ञान क्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञान क्षेत्र में ही रहा, पर अरब, फारस आदि में जाकर यह भाव क्षेत्र के बीच मनोहर रहस्य भावना के रूप में फैला। यूरोप में भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैतवाद ईसाई मजहब के भीतर रहस्य भावना के ही रूप में लिया गया। रहस्योन्मुख सूफियों और पुराने कैथोलिक ईसाई भक्तों की साधना समान रूप से माधुर्य भाव की ओर प्रवृत्त रही। जिस प्रकार सूफी ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में करते थे, उसी प्रकार स्पेन, इटली आदि यूरोपीय प्रदेशों के भक्त भी। जिस प्रकार सूफी हाल की दशा में उस माशूक से भीतर ही भीतर मिला करते थे, उसी पुराने ईसाई भक्त साधक भी दुल्ही बनकर उस दूल्हे से मिलने के लिए अपने अंतरदेश में कई खंडों के रंगमहल तैयार किया करते थे। ईश्वर की पति रूप में उपासना करने वाली सैफो, सेंट टेरेसा आदि कई भक्तिनें भी यूरोप में हुई हैं। अद्वैतवाद के दो पक्ष हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत की एकता। दोनों मिलकर सर्ववाद की प्रतिष्ठा करते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यद्यपि साधना के क्षेत्र में सूफियों और पुराने ईसाई भक्तियों द्वारा दोनों की दृष्टि प्रथम पक्ष पर ही दिखाई देती है, पर भाव क्षेत्र में जाकर सूफी प्रकृति की नाना विभूतियों में भी उसकी छवि का अनुभव करते आए हैं। ईसा की 19वीं शताब्दी में रहस्यात्मक कविता का जो पुनरुत्थान यूरोप के कई प्रदेशों में हुआ, उसमें सर्ववाद का, ब्रह्म और जगत की एकता का भी बहुत कुछ आभास रहा। वहाँ इसकी ओर प्रवृत्ति स्वतंत्र और लोक सत्तात्मक भावों के प्रचार के साथ ही साथ दिखाई पड़ने लगी। स्वतंत्र के बड़े भारी उपासक अंग्रेज कवि शेली में इस प्रकार के सर्ववाद की झलक पाई जाती है। आयरलैंड में स्वतंत्रता की भाषण पुकार के बीच ईट्स की रहस्यमयी कविवाणी भी सुनाई देती रही है। ठीक समय पर पहुंचकर हमारे यहाँ के कविंद्र रविंद्र भी वहाँ के सुर में सुर मिला आए थे। पश्चिमी समालोचकों की समझ में वहाँ के इस काव्यगत सर्ववाद का संबंध लोक सत्तात्मक भावों के साथ है। इन भावों के प्रचार के साथ ही स्थूल गोचर पदार्थों के स्थान पर सूक्ष्म अगोचर भावना की प्रवृत्ति हुई और वही काव्य क्षेत्र में जाकर भड़कीली और अस्फुट भावनाओं तथा चित्रों के विधान के रूप में प्रकट हुई। अद्वैतवाद के मूल में एक दार्शनिक सिद्धांत है, कवि कल्पना या भावना नहीं, वह मनुष्य के बुद्धि प्रयास या तत्व चिंतन का फल है या ज्ञान क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है, अर्थात जब उसका संचार भाव क्षेत्र में होता है, तब उच्च कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावात्मक और साधनात्मक। हमारे यहाँ का योग मार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृत और जटिल अभ्यासों द्वारा मन को व्यक्त तथ्यों को साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने की आशा देता है। तंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद है, पर निम्न कोटि के। भावात्मक रहस्यवाद की भी कई श्रेणियां हैं, जैसे भूत प्रेत की सत्ता मानकर चलने वाली भावना स्थूल रहस्य के अंतर्गत होगी। अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद को लेकर चलने वाली भावना से सूक्ष्म और उच्च कोटि के रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। तात्पर्य यह है कि रहस्यवाद किसी विश्वास के आधार पर चलती है, विश्वास करने के लिए कोई नया तथ्य या सिद्धांत नहीं उपस्थित कर सकती। किसी नवीन ज्ञान का उदय उसके द्वारा नहीं हो सकता। जिस कोटि का ज्ञान या विश्वास होगा, उसी कोटि की उससे अद्भुत रहस्य भावना होगी। अद्वैतवाद का प्रतिपादन सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय ज्ञान कांड के मूल हैं। प्राचीन ऋषि तत्व चिंतन द्वारा ही अद्वैतवाद के सिद्धांत पर पहुंचे थे। उनमें इस ज्ञान का उदय विद्धि की स्वाभाविक क्रिया द्वारा हुआ था। प्रेमोन्माद या बेहोशी की दशा में सहसा एक दिव्य आभास या इल्हाम के रूप में नहीं। विविध धर्मों का इतिहास लिखने वाले कुछ पाश्चात्य लेखकों ने उपनिषदों के ज्ञान को जो रहस्यवाद की कोटि में रखा है वह उनका भ्रम या दृष्टि संकोच है। बात यह है कि उस प्राचीन काल में दार्शनिक विवेचन को व्यक्त करने की व्यवस्थित शैली नहीं निकली थी। जगत और उसके मूल कारण का चिंतन करते करते जिस तथ्य तक ये पहुँचते थे उसकी व्यंजना अनेक प्रकार से करते थे, जैसा आजकल किसी गंभीर विचारात्मक लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख हो जाती है और वह काव्य की भावात्मक शैली का अवलंबन करता है। उसी प्रकार उस प्राचीन ऋषियों को भी विचार करते करते गंभीर मार्मिक तथ्य पर पहुंचने पर कभी कभी भावोन्मेष होता था और ये अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक और अनूठे ढंग से कर देते थे। गीता के 10वें अध्याय में सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण है। वहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है। सर्ववाद को लेकर जब भक्त की मनोवृत्ति रहस्योन्मुख होगी तब वह अपने हृदय को जगत के नाना रूपों के सहारे उस परोक्ष सत्ता की ओर ले जाता हुआ जान पड़ेगा। वह खिले हुए फूलों में, शिशु के स्मित आनंद में, सुंदर मेघमाला में, निखरे हुए चंद्र बिंब में उसके सौंदर्य का, गंभीर मेघ गर्जना में, बिजली की कड़क में, वज्रपात में, भूकंप आदि प्राकृतिक विप्लवों में उसकी रौद्र मूर्ति का, संसार के असामान्य वीरों, परोपकारियों और त्यागियों में उसकी शक्ति, शील आदि का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार अवतारवाद का मूल भी रहस्य भावना ही ठहरती है, पर अवतारवाद के सिद्धांत रूप में गृहित हो जाने पर रामकृष्ण के व्यक्त ईश्वर विष्णु के अवतार स्थित होने पर रहस्य दशा की एक प्रकार से समाप्ति हो गई। फिर राम और कृष्ण का ईश्वर के रूप में ग्रहण व्यक्तिगत रहस्य भावना के रूप में नहीं रह गया, वह समस्त जन समाज के धार्मिक विश्वास का एक अंग हो गया। इसी व्यक्त जगत के बीच प्रकाशित राम कृष्ण की नर लीला भक्तों के भावोद्रेक का विषय हुई। अतः राम कृष्ण उपासकों की भक्ति रहस्यवाद की कोटि में नहीं आ सकती। यद्यपि समष्टि रूप में वैष्णवों की सगुणोपासना रहस्यवाद के अंतर्गत नहीं कही जा सकती, पर श्रीमद् भागवत के उपरांत कृष्ण भक्ति का जो रूप प्राप्त हुआ उसमें रहस्य भावना की गुंजाइश हुई। भक्तों की दृष्टि से जब धीरे धीरे श्री कृष्ण का लोक संग्रह रूप हटने लगा और ये प्रेम मूर्ति मात्र रह गए, जब उनकी भावना एकांतिक हो चली, भक्त लोग भगवान को अधिकतर अपने ही संबंध से देखने लगे, जगत के संबंध से नहीं। गोपियों का प्रेम जिस प्रकार एकांत रूप माधुर्य मात्र पर आश्रित था उसी प्रकार भक्तों का भी हो चला। यहाँ तक कि कुछ स्त्री भक्तों में भगवान के प्रति उसी रूप का प्रेम भाव स्थान पाने लगा जिस रूप का गोपियों का कहा गया था। उन्होंने भगवान की भावना प्रियतम के रूप में की। बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की जो प्रथा थी उससे इस माधुर्य भाव को और भी सहारा मिला। माता पिता कुमारी लड़कियों को मंदिर में दान कराते थे जहां उनका विवाह देवता के साथ हो जाता था, अतः उनके लिए उस देवता की भक्ति पति रूप में ही विधेय थी। इन देवदासियों में से कुछ उच्च कोटि की भक्तिनें भी निकल आती थीं। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की भक्तिन थी जिसका जन्म विक्रम संवत 773 के आसपास हुआ था। वह बहुत छोटी अवस्था में किसी साधु को एक पेड़ के नीचे मिली थी। वह साधु भगवान का स्वप्न मानकर उसे विवाह के वस्त्र पहनाकर श्री रंग जी के मंदिर में छोड़ आया था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावाई नामक पुस्तक में अब तक मिलते हैं। अंदाल एक स्थान पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। पति या प्रियतम रूप में भगवान की भावना को वैष्णव भक्ति मार्ग में माधुर्य भाव कहते हैं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य और स्वाभाविक है। भारतीय भक्ति का सामान्य स्वरूप रहस्यात्मक न होने के कारण इस माधुर्य भाव का अधिक प्रचार नहीं हुआ। आगे चलकर मुसलमानी जमाने में सूफियों की देखा देखी इस भाव की ओर कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ भक्त प्रवृत्त हुए। इनमें मुख्य मीराबाई हुई जो लोक लाज खोकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली रहा करती थी। उन्होंने एक बार कहा था कि कृष्ण को छोड़ और पुरुष कौन, सारे स्त्री रूप हैं। सूफियों का असर कुछ और कृष्ण भक्तों पर भी पूरा पूरा पाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु में सूफियों की प्रवृत्तियां साफ झलकती हैं। जैसे सूफी कव्वाल गाते गाते हाल की दशा में हो जाते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की मंडली भी नाचते नाचते मूर्छित हो जाती थी। यह मूर्छा रहस्यवादी सूफियों की रूढ़ी है। इसी प्रकार मद, प्याला, उन्माद तथा प्रियतम ईश्वर के विरह की दूरारूढ़ व्यंजना भी सूफियों की बंधी हुई परंपरा है। इस परंपरा का अनुसरण भी पिछले कृष्ण भक्तों ने किया। नागरी दास जी इश्क का प्याला पीकर बराबर झूमा करते थे। कृष्ण की मधुर मूर्ति ने कुछ आजाद सूफी फकीरों को भी आकर्षित किया। नजीर अकबराबादी ने खड़ी बोली के अपने बहुत से पद्यों में श्री कृष्ण का स्मरण प्रेमावलंबन के रूप में किया है। निर्गुण शाखा के कबीर, दादू आदि संतों की परंपरा में ज्ञान का जो थोड़ा बहुत अवयव है वह भारतीय वेदांत का है, पर प्रेम तत्व बिल्कुल सूफियों का है। इनमें से दादू दरिया साहब आदि खालिस सूफी ही जान पड़ते हैं। कबीर में माधुर्य भाव जगह जगह पाया जाता है। ये कहते हैं, हरि मोर पीयू मैं राम की बहुरिया। राम की बहुरिया कभी तो प्रिय से मिलने की उत्कंठा और मार्ग की कठिनता प्रकट करती है। जैसे मिलना कठिन है, कैसे मिलोंगी पिय जाए, समुझी सोची पग धरो जतन से बार बार डगी जाए, ऊंची गैल राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए, और कभी विरह दुख निवेदन करती है। पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में साधनात्मक रहस्यवाद ही हठ योग तंत्र और रसायन के रूप में प्रचलित था। जिस समय सूफी यहाँ आए उस समय उन्हें रहस्य की प्रवृत्ति हठ योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में ही दिखाई पड़ी। हठ योग की तो अधिकांश बातों का समावेश उन्होंने अपनी साधना पद्धति में कर लिया। पीछे कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद और सूफियों की प्रेम भावना मिलाकर जो निर्गुण संत मत खड़ा किया उसमें भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नारी तथा भीतरी चक्रों की पूरी चर्चा रही। हठ योगियों तथा नाथपंथियों की दो बातें सूफियों और निर्गुण मत वाले संतों को अपने अनुकूल दिखाई पड़ी। एक, रहस्य की प्रवृत्ति। दो, ईश्वर को केवल मन के भीतर समझना और ढूंढना। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों बातें भारतीय भक्ति मार्ग से पूरा मेल खाने वाली नहीं थी। अवतारवाद के सिद्धांत रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण भारतीय परंपरा का भक्त अपने उपास्य को बाहर लोक के बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने हृदय के एकांत कोने में ही नहीं। पर फारस में भावात्मक अद्वैती रहस्यवाद खूब फैला। वहां की शायरी पर इसका रंग बहुत गहरा चढ़ा। खलीफा लोगों के कठोर धर्म शासन के बीच भी सूफियों की प्रेममयी वाणी ने जनता को भावमग्न कर दिया। इस्लाम के प्रारंभिक काल में ही भारत का सिंध प्रदेश ऐसे सूफियों का अड्डा रहा जो यहाँ के वेदांतियों और साधकों के सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि करते रहे। अतः मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदुओं और मुसलमानों के समागम से दोनों के लिए जो एक सामान्य भक्ति मार्ग आविर्भूत हुआ वह अद्वैती रहस्यवाद को लेकर, जिसमें वेदांत और सूफी मत दोनों का मेल था। पहले पहल नामदेव ने, फिर रामानंद के शिष्य कबीर ने जनता के बीच इस सामान्य भक्ति मार्ग की अटपटी वाणी सुनाई। नानक, दादू आदि कई साधक इस नए मार्ग के अनुगामी हुए और निर्गुण संत मत चल पड़ा। पर इधर वह निर्गुण भक्ति मार्ग निकला, उधर भारत के प्राचीन सगुण मार्ग ने भी जो पहले से चला आ रहा था जोर पकड़ा और रामकृष्ण की भक्ति स्रोत बड़े वेग से हिंदू जनता के बीच बहा। दोनों की प्रवृत्ति में बड़ा अंतर यह दिखाई पड़ा कि एक तो लोक पक्ष से उदासीन होकर केवल व्यक्तिगत साधना का उपदेश देता रहा, पर दूसरा अपने प्राचीन स्वरूप के अनुसार लोक पक्ष को लिए रहा। निर्गुण वाणी वाले संतों के लोक विरोधी स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना था। जैसा कि अभी कहा जा चुका है, रहस्यवाद का स्फुरण सूफियों में पूरा पूरा हुआ। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण, पर कबीरदास पर इस्लाम के कट्टर एकेश्वरवाद और वेदांत के मायावाद का रूखा संस्कार भी पूरा पूरा था। उनमें वाक चातुर्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान की कला का दर्शन करने वाली भावुकता न थी। इससे रहस्यमय परोक्ष सत्ता की ओर संकेत करने के लिए जिन दृश्यों को वे सामने करते हैं ये अधिकतर और हठ योग की बातों के खड़े किए हुए रूपक मात्र होते हैं। अतः कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। ये सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रूप माधुर्य की छाया देखते हैं, और कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का पुरुष के समागम के हेतु प्रकृति के श्रृंगार, उत्कंठा या विरह विकलता के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे प्रकार की भावना पद्मावत में अधिक मिलती है। आरंभ में कह आए हैं कि पद्मावत के ढंग के रहस्यवाद पूर्ण प्रबंधों की परंपरा जायसी के पहले की है। मृगावती, मधुमालती आदि की रचना जायसी के पहले हो चुकी थी और उनके पीछे भी ऐसी रचनाओं की परंपरा चली। सब में रहस्यवाद मौजूद है। अतः हिंदी के पुराने साहित्य में रहस्यवादी कवि संप्रदाय यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहने वाले मुसलमान कवियों का ही। जायसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे। भारतीय पद्धति के कवियों की दृष्टि फारस वालों की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों पर कहीं अधिक विस्तृत तथा उनके मर्मस्पर्शी स्वरूपों को कहीं अधिक परखने वाली होती है। इससे उस रहस्यमय सत्ता का आभास देने के लिए जायसी बहुत ही स्मरणीय और मर्मस्पर्शी दृश्य संकेत उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं। कबीर में चित्रों की न वह अनेक रूपता है न वह मधुरता। देखिए उस परोक्ष ज्योति और सौंदर्य सत्ता की ओर कैसी लौकिक दीप्ति और सौंदर्य के द्वारा जायसी संकेत करते हैं। रवि शशि नखत निशहि ओहि ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। जहाँ जहाँ बिहसी सुभा वही हंसी तहाँ तहाँ छिटकी ज्योति पर गसी। नैना जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी दीप्ति उसी से है। इस बात का आभास पद्मावती के प्रति रत्न सेन के ये वाक्य दे रहे हैं। अनुधनी तू निसियर निसीमाह हौ दिनियर जही कह तू छाह चांद ही कहा ज्योति और करा सूरज के ज्योति चांद निर्मरा। अंग्रेज कवि शैली की पिछली रचनाओं में इस प्रकार के रहस्यवाद की कला बड़ी सुंदर दृश्यावली के बीच दिखाई देती है। स्त्रीत्व का आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित करने वाले एपिपसाइकिडियन में प्रिया की मधुर वाणी प्रकृति क्षेत्र में कहां कहां सुनाई पड़ती है। इन सॉलिट्यूड हर वॉयस केम टू मी थ्रू द हिस्परिंग वुड्स एंड फ्रॉम द फाउंटेन्स एंड द ओडर्स डीप आओ flowers which like lips murmuring in their sleep of the sweet kisses his had loved them there breathe but of her to the enamored air and from the breezes whether o lord loud and from the rain of every passing cloud and from the singing of the summer birds and from all sounds all silence। भावार्थ निर्जन स्थानों के बीच मरमर करते हुए काननों में झरनों में उन पुष्पों की पराग गंध में उस दिव्य चुंबन के सुख स्पर्श से सोए कुछ बर्राते से मुग्ध पवन को उसका परिचय दे रहे हैं। इसी प्रकार मंद या तीव्र समीर में प्रत्येक दौड़ते हुए मेघकंड की झाड़ी में वसंत के विहंगमों के कल कूजन में तथा प्रत्येक ध्वनि में और निस्तब्धता में भी मैं उसी की वाणी सुनता हूँ। कबीर दास में यह बात नहीं है। उन्हें बाहर जगत में भगवान की एक रूपता नहीं दिखाई देती। ये सिद्धों और योगियों के अनुकरण पर ईश्वर को केवल अंतस में बताते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में। जैसी भी उसके भीतर बताते हैं पियो हिरदर मह भेंट न होई कोरे मिलाव कहो के ही रोई। पर जैसा कि पहले दिखा चुके हैं ये उसके रूप की छटा प्रकृति के नाना रूपों में भी देखते हैं। मानस के भीतर उस प्रियतम के सामीप्य से उत्पन्न कैसे अपरिमित आनंद की कैसे विश्वव्यापी आनंद की व्यंजना जैसी की इन पंक्तियों में है। देखी मानसर रूप सुहावा हिम हुलास पुर इन हुई छावा गा अंधियार रैन मसी छूटी भा भिनसार किरण रवि फूटी कमल बिगस तस्बी हसी देही भवर दसन होई कैरस लेही। देखी अर्थात उस अखंड ज्योति का आभास पाकर वह मानस जगमगा उठा। देखिए न खिले कमल रूप में उल्लास मानसर में चारों ओर फैला है। उस ज्योति के साक्षात्कार से अज्ञान छूट गया प्रभात हुआ पृथ्वी पर से अंधकार हट गया आनंद से चेहरा खिल उठा बत्ती सी निकल आई कमल खिल उठे और उन पर भौरे दिखाई दे रहे हैं। अंतर जगत और बाह्य जगत का कैसा अपूर्व सामंजस्य है कैसी बिंब प्रतिबिंब स्थिति है। उस प्रियतम के प्रेम से प्रकृति कैसी विद्ध दिखाई देती है। उन बानन अस को जो न मारा बेद ही रहा सगरो संसारा गगन नखत जो जाहि न गने वै सब बान ओही के हने। धरति बान बेधी सब राखी, साखी ढाल दे ही सब साखी, रोव रोव मानुस तन ढाड़े, सूत ही सूत बेध अस गाढ़े, बरु निचाप अस ओपह, बेंधे रन बन ढाँख, सौज ही तन सब रोवा, पंखी ही तन सब पाँख, पृथ्वी और स्वर्ग, जीवन और ईश्वर दोनों एक थे, बीच में न जाने किसने इतना भेद डाल दिया है, धरती सरग मिले हुत दो, केई निनार कैदीन बिछो, जो इस पृथ्वी और स्वर्ग से वियोग तत्व को समझेगा और उस वियोग में पूर्ण रूप से सम्मिलित होगा, उसी का वियोग सारी सृष्टि में इस प्रकार फैला दिखाई देगा। सूरज बूढ़ी उठा हुई ताता, और मजीठ टेसु बन राता, भा बसंत राती बनस्पति, और आते सब जोगी जति, भूमि जो भीज भयो सब गेरु, और आते सब पंखी पखेरु, राती सती अग्नि सब काया, गगन मेघ राते तेही छाया, सायं प्रभात न जाने कितने लोग मेघ खंडों को रक्त वर्ण होते देखते हैं, पर किस अनुराग से ये लाल हैं, इसे जायसी के रहस्यदर्शी भावुक ही समझते थे। प्रकृति के सारे महाभूत उस अमर धाम तक पहुंचने का बराबर प्रयत्न करते रहते हैं, पर साधना पूरी हुए बिना पहुंचना असंभव है। धाई जो बाजा कै मन सधा, मारा चक्र भयो दुई आधा, चांद सूरज और नखत तराई, तही डर अंतरिक फिरही सबाई, पवन जाई तह पहुँचे चहा, मारा तैस लोटी भूई रहा, अग्नि उठी जरी बुझी नियाना, धुआं उठा उठी बीच मिलाना, पानी उठा उठी जाई न छुआ, बहुरा रोई आई भई चुआ। इस अद्वैती रहस्यवाद के अतिरिक्त जायसी कहीं कहीं उस रहस्यवाद में भी आ फंसे हैं जो पाश्चात्यों की दृष्टि में झूठा रहस्यवाद है। उन्होंने स्थान स्थान पर हठ योग रसायन आदि का भी आश्रय लिया है।